हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तारा की जिंदगी में अब कुल मिलाकर चीजें सही जा रही थी, जहां मिली और उसके भाई बहन मिल गए थे। ध्रुव ने उनके रहने के लिए एक अच्छी खासी जगह का भी इंतजाम कर दिया था। मिली और उसके भाई बहनों को वहां से सुरक्षित निकालने का वादा करने के बाद तारा कहीं जाने के लिए निकल गई थी। वो हड़बड़ाहट में चल रही थी कि तभी दक्ष मल्होत्रा की गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हालांकि तारा को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन वो दक्ष की इस हरकत की वजह से काफी गुस्सा भी हो गई थी। तारा फुटपाथ पर चल रही थी, फिर भी दक्ष की गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। इसे तो मैं बताती हूँ, पूरी रोड को अपनी बाप की जागीर समझ रखा है ना मीरजादों ने, तारा ने गुस्से में बड़बड़ा कर कहा। दक्ष से बहस करने के लिए उसने अपना मास्क निकाला, लेकिन जैसे ही दक्ष गाड़ी से बाहर निकल कर आया, तारा ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। OMG, दक्ष, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर दक्ष ने मुझे देख लिया तो? नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती हूँ, तारा मन ही मन बड़बड़ाई। तारा ने जल्दी से अपना मास्क पहन लिया था। उसके घुटने में चोट लगी थी, फिर भी वो पूरी तेजी से दक्ष से भागकर दूर जा रही थी। वहीं दक्ष उसकी इस हरकत पर उसे हैरानी से देख रहा था। दक्ष को अचानक अपने सामने देखकर तारा घबरा गई थी। अजीब लड़की है, इसकी जगह कोई और होती तो मेरी इस हरकत पर मुझे ना जाने कितनी बातें सुनाती और केस करने की धमकी तक दे देती। खैर, जो भी हो, मूड खराब होने से बच गया, साथ ही किसी की अनवांटेड डिमांड भी पूरी नहीं करनी पड़ी। ऐसे ही महर और इस ध्रुव राणा की शादी के चक्कर में दिमाग खराब हुआ है। ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगा, दक्ष खुद से बड़बड़ाया और वापस गाड़ी में जाकर बैठ गया था। वहीं दक्ष दौड़ने के बाद आगे जाकर छिप गई थी। जब उसने दक्ष की गाड़ी को वहां से निकलते हुए देखा तो उसने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, आज तो बच गई, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। बाकी सब तो ठीक है, पर दक्ष यहाँ मुंबई में क्या कर रहा है? अगर दक्ष यहाँ पर है तो पूरी मल्होत्रा फैमिली भी यहीं होगी, और वो भी। सोचते हुए तारा की आंखें नम होने लगी थीं। उसने तुरंत खुद को संभाला और वहां से तेज कदमों में चलते हुए कहीं जाने लगी। थोड़ी ही देर बाद तारा एक फ्लैट पर पहुंच चुकी थी। ये उसी का घर था जिसके बारे में कबीर तक नहीं जानता था। तारा ने ये अपार्टमेंट रेंट पर ले रखा था और ज्यादातर अपना फ्री टाइम यहीं पर बिताती थी। तारा ने सिक्योरिटी पासवर्ड लगाया और फिर अंदर जाते ही सबसे पहले अपना मोबाइल निकाला। इस वक्त तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो वायु, तारा ने खुद से कहा और फिर वायु को कॉल किया। अगले 2 सेकंड के अंदर वायु ने उसका कॉल रिसीव कर लिया था। सामने से एक दिलकश आवाज आई। तो तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, तभी कॉल किया है? ऐसा नहीं है वायु, मैं अभी भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने किसी और वजह से तुम्हें कॉल किया है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तारा ने परेशान स्वर में कहा। तारा इस वक्त जिस वायु से बात कर रही थी, उसके दादाजी मिस्टर परमजीत कपूर तारा के आइडल और मेंटर रह चुके थे। वो एक IPS ऑफिसर रह चुके थे। उन्हीं के जरिए वो वायु से मिली थी और उनकी दोस्ती हो गई थी। वायु तारा को पसंद करने लगा था और उसने तारा के सामने शादी का प्रपोजल रखा था। तारा ने उसे यही कहा था कि जिस दिन वो उससे शादी के लिए तैयार हो जाएगी, बस तभी कॉल करेगी। पर आज उसे किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी और ऐसे में सिर्फ वायु ही उसकी हेल्प कर सकता था। तुम्हें शर्म नहीं आती बार बार ना कहकर किसी इंसान का दिल तोड़ते हुए? एक तो तुम हर बात मानकर मुझे हर्ट करती हो, ऊपर से इस बात की उम्मीद रख रही हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, वायु ने भौंहें उठाकर कहा। इस समय वायु न्यूयॉर्क में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वो एक हैंडसम बिलियनर बिजनेसमैन था जिससे कोई भी लड़की खुशी खुशी शादी कर लेती, लेकिन उसने तारा को सेलेक्ट किया। बदकिस्मती से तारा ने उसे मना कर दिया, पर फिर भी वायु उसकी हाँ के इंतजार में था। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पक्का यकीन है कि तुम मेरी मदद करोगे वायु, मुझे कुछ लोगों की सिक्योरिटी और रहने की जगह चाहिए, वो भी इंडिया के अंदर, क्या तुम अरेंज कर सकते हो, तारा ने गंभीर आवाज में कहा। वो मिली और उसके भाई बहनों के लिए मदद मांग रही थी। कुछ सीरियस है क्या तारा, वायु ने तुरंत पूछा। तारा ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ सीरियस ही है, मुझे उनके रहने के लिए ईस्टर्न इंडिया में जगह चाहिए। उस तरफ जल्दी से कोई नहीं जाता है, खासकर जिसे उसने बचाना है वो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। रहने के लिए एक नॉर्मल घर और उनके लिए एक छोटा सा काम भी सेट करना होगा। उनके साथ बच्चे रहते हैं, उनका स्कूल में एडमिशन वगैरह मैं देख लूंगी, बस तुम रहने का, तारा वायु को सब समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, तुमने मुझे कॉल किया है तो तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे 24 घंटे का टाइम दो, मैं किसी को उस तरफ भेजता हूँ, चिंता मत करो, तुमने मुझ पर यकीन किया है तो मैं कभी उसे टूटने नहीं दूंगा। वायु के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसे खुशी थी कि तारा ने उस पर यकीन करते हुए उससे मदद मांगी थी। थैंक यू सो मच वायु, बाद में बात करती हूँ, तारा ने जवाब दिया। वो कॉल कट करने को हुई तभी वायु जल्दी से बोला, अच्छा रुको, तुमने अभी भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया है,
आज भी मेरा सवाल वही है तारा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे लिए इंडिया तक में रहने को तैयार हूँ। वायु का सवाल सुनकर तारा सोच में पड़ गई थी। तारा को चुप देखकर वायु बोला, अच्छा ठीक है, अब मैं शायद तुम्हें इरिटेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि चाहे तुम मुझे हाँ ना कहो, लेकिन कॉल करती रहा करो, मुझे अच्छा लगता है जब तुमसे बात होती है। मैं तैयार हूँ वायु, अचानक तारा बोली। तारा के हाँ कहने पर वायु की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो जल्दी से बोला, क्या सच में? आई मीन, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। बस इन लोगों की सिक्योरिटी का हो जाए, उसके बाद 3 दिन बाद मैं न्यूयॉर्क के लिए निकल जाऊंगी। हम शादी कर लेंगे वायु, मैं तैयार हूँ, तारा ने जवाब दिया। उसे भी इंडिया छोड़ना था और ध्रुव की नजरों से दूर जाना था। ध्रुव ने उसके दिल में जगह बना ली थी, लेकिन वो उससे आगे बढ़ना चाहती थी। हालांकि तारा का सपना था कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करे, लेकिन कबीर जिस तरह से उसे चैलेंज कर रहा था, उसके बाद वो वापस अपने सपने को पूरा करने के लिए जॉब पर नहीं जा सकती थी। वहीं उसे कबीर और ध्रुव से प्रोटेक्ट करने के लिए वायु से अच्छा ऑप्शन उसके लिए नहीं हो सकता था। ओके, फिर मैं जल्द से जल्द उनकी सिक्योरिटी और रहने के इंतजाम कर दूंगा, थैंक यू सो मच, वायु खुश होकर बोला। तारा ने कॉल कट कर दिया था। वायु से बात करने के बाद उसे बेहतर महसूस हो रहा था, तो साथ में उसके दिल में गिल्ट भी था। वो दिल से वायु से शादी नहीं करना चाहती थी, पर फिलहाल की स्थिति में वायु ही उसे इन सब चीजों से बचा सकता था। ज्यादा मत सोचो तारा, ध्रुव भी अपने मकसद के लिए शादी कर रहा है। उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो उस मेहर से प्यार नहीं करता, तो फिर तुम क्यों प्यार जैसी सिली चीज को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हो? ऊपर से दक्ष और उसकी फैमिली भी मुंबई में आ गई है। कई बार प्यार से ज्यादा जरूरी चीज खुद आपकी खुशियां और सुरक्षित रहना होता है, और वो वायु से बेहतर कोई नहीं दे सकता, तारा खुद को मन ही मन समझाने की कोशिश कर रही थी। तारा फिर वहां ज्यादा देर नहीं रुकी और वहां से सीधा युग के विला पर चली गई थी। तारा काफी दिनों से वहां रह रही थी, ऊपर से ध्रुव के भी ऑर्डर्स थे कि तारा को अंदर आने से नहीं रोका जाए। तभी सिक्योरिटी ने उसे कोई सवाल भी नहीं किया और सीधा अंदर जाने दिया।
दूसरी तरफ राणा मेंशन में ध्रुव और तारा की शादी की रस्में शुरू हो गई थीं। सुबह के वक्त उनकी हल्दी की रस्म थी, जहां ध्रुव मुंह बनाकर बैठा हुआ था। उसने इस रस्म में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। शाम को ध्रुव तारा को लेने के लिए जाने के लिए सोच रहा था कि तभी उसे सारा ने पकड़ लिया था। कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था कि शादी की रस्में होने से पहले कहीं नहीं जाना है। आज शाम को मेहंदी की रस्म है, अब थोड़े दिन के लिए अपने कामों को टाल दो या फिर वीर को बोल दो, सारा ने उसे रोकते हुए कहा। लेकिन मासी, आप भी जानती हैं कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। दूसरी बात, मुझे कोई मेहंदी वहंदी लगवाने में इंटरेस्ट नहीं है, ये सब लड़कियों के काम होते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते, ध्रुव ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा, तो तुम्हें बहुत कुछ नहीं लगता है, पर फिर भी तुम कर रहे हो ना? तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल चुप हूँ और शादी में अच्छे से इन्वॉल्व हो रही हूँ, क्योंकि तुम सच में उस लड़की से शादी करना चाहते हो। इतनी वजह काफ़ी नहीं है तुम्हें हमारी बात मानने के लिए ध्रुव राणा, सारा सख्ती से बोली। उसकी आवाज़ से साफ था कि वो भी ध्रुव से नाराज थी। उस दिन जब ध्रुव ने सारा और कृषा की बातों को सुन लिया था, तब उसने सारा से अकेले में बात की थी और उसे यही समझाया था कि वो मेहर से शादी करके खुश है। सारा के आगे ध्रुव को हार माननी ही पड़ी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, यही थोड़ी सी सख्ती आप कृष को भी दिखा देती तो वो भी शादी अटेंड करने के लिए खुद को अच्छे से तैयार कर लेती। सुबह हल्दी की रस्म में आई तक नहीं थी और अभी मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। ऐसे कैसे नहीं आएगी? सुबह की बात अलग थी, वो युग के साथ कहीं गई हुई थी। दरवाजे की तरफ देखो, युग और कृषा दोनों ही आ रहे हैं, सारा ने मुस्कुराकर कहा। तो ध्रुव ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा। पहली बार ध्रुव को ऐसा एहसास हुआ कि सच में कृषा और युग उसकी शादी के किसी फंक्शन में दिल से शामिल होने के लिए आए थे। थीम को ट्विन करते हुए युग ने फॉरेस्ट ग्रीन कलर का इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ था, तो वहीं कृषा ही उससे मैच करते हुए गरारा सेट पहना था। उसने अपने बालों को पीछे चोटी में बांध रखा था। बिल्कुल मिनिमल से मेकअप के बाद भी वो काफी खूबसूरत लग रही थी। डैड ने अपने लिए सच में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चुना था। उन दोनों को साथ में देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे चाचू की चॉइस अच्छी नहीं है, सारा उसे घूरते हुए बोली। चॉइस अच्छी है, लेकिन चाचू बहुत सीधे हैं। आई एम डैम श्योर कि आपने ही पहल की होगी, वरना उनसे कुछ नहीं होने वाला था, ध्रुव ने उसे परेशान करते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, अब देखो ना, तुम्हारे डैड इस मामले में आगे निकले तो उन्होंने अपने प्यार से शादी कर ली, तो हमारे मामले में मैंने सब कुछ संभाला, पर अफसोस इस मामले में ना तुम अपनी मासी पर गए हो और ना ही डैड पर, सारा ने बातों ही बातों में उसे ताना दिया और फिर तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई थी। ध्रुव ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया था। वो कृषा के पास गया। ध्रुव ने शिकायत लगाते हुए कृषा से कहा, आप कहाँ रह गई थी और सुबह क्यों नहीं आई थी? आपने प्रॉमिस किया था कृष कि आप मेरे हर एक मोमेंट में शामिल होंगी। कृषा ने कुछ भी बताने से पहले युग की तरफ देखा तो उसने हाँ में पलके झपका दी थी। कृषा ने ध्रुव को गले लगाया और बिल्कुल धीमी आवाज में उसके कान के पास कहा, रिएक्ट मत करना, लेकिन याशी यही मुंबई में है। युग जब उसे छोड़ने के लिए गया था तब उसे लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, बस इसी वजह से सुबह याशी के पास जाना पड़ा।
आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी आ जाता। अगर एंजल यहाँ पर है तो उसे घर, बोलते हुए ध्रुव रुक गया था। अब उसे भी समझ आ गया था कि याशी को घर में लाना सेफ नहीं था। वो सिर हिलाकर बोला, ठीक है कोई बात नहीं, एंजल की सिक्योरिटी भी जरूरी है। ध्रुव, योग और कृषा को आपस में ही लगा हुआ देखकर मेहर के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो मेहंदी की रस्म के लिए अभी अभी तैयार होकर आई थी। उसने ग्रीन कलर की डिजाइनर साड़ी पहनी हुई थी जिसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज था, लेकिन ध्रुव ने तो मुड़कर उसकी तरफ देखा तक नहीं था। मेहर को ज्यादा कुछ रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला क्योंकि अलीजा और अलीशा उसे अपने साथ गार्डन एरिया में मेहंदी की रस्म के लिए लेकर गई थी। कुछ ही देर में उनकी मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी, जहां ध्रुव ने रस्म के चलते बस हल्का सा टीका लगाया था और मेहर के हाथ में हैवी मेहंदी लगाई जा रही थी। मेहंदी की रस्म के साथ ही संगीत का प्रोग्राम भी कर लिया गया था। हालांकि शादी परसों होने वाली थी, पर ध्रुव और मेहर दोनों ही अपनी अपनी तरफ से बैचलर पार्टी शुरू करने वाले थे। रस्म खत्म होने के बाद सब अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके थे। अगला दिन सबका शादी की तैयारी के बीच बिजी रहा था, तो शाम को ध्रुव और मेहर अपने अपने हिसाब से अलग अलग वेन्यू पर बैचलर पार्टी में पहुंच गए थे। कृषा अपने साथ तारा को भी लेकर गई थी। तारा ने साफ मना कर दिया था, पर कृषा उसे जबरदस्ती वहां पर लेकर गई। पार्टी के अंदर जाने से पहले कृषा किसी काम के चलते बाहर चली गई थी, तो वहीं तारा जब अकेले वहां पहुंची तो मेहर उसे गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। अब उसे अच्छा मौका मिला था सबके सामने तारा की इंसल्ट करने का। मेहर ने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया तो उसने तारा को वहीं दरवाजे पर ही रोक दिया था। मेहर अपनी फ्रेंड्स के साथ तारा के पास आ रही थी ताकि उसे बेइज्जत करके वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल सके। देखते हैं मेहर का प्लान कितना सक्सेसफुल होता है। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं।